किसी की परिभाषा से गुलाब का फूल लाल हुआ कि कोई आया परिभाषा दी? गुलाब का फूल किसी की परिभाषा से लाल नहीं हुआ। सत्य किसी की परिभाषा नहीं है, अनुभूति है, विज्ञान परिभाषा खोज रहा है। और आज विज्ञान सहमत हो गया, जो पढ़े लिखे लोग हैं, धर्म मन की स्थिति है, सहजता है। और जब तक आप प्रक्रिया में लगे हैं, रिसर्च में लगे हैं, तब तक आप वैज्ञानिक हैं। और विज्ञान मान रहा है, विज्ञान मान रहा है कि धर्म को अपना ले विज्ञान तो दिशा भी मिलेगी, सहजता भी मिलेगी और सफलता भी मिलेगी। खुद वैज्ञानिक कह रहे हैं, अगर विज्ञान धर्म को नहीं अपनाया तो विनाश हो जाएगा। विज्ञान में विनाश करने की शक्ति है, रक्षा करने की शक्ति नहीं है। विज्ञान में गति है लेकिन दिशा नहीं है, दिशा धर्म ही देगा। इसलिए जो आज का विषय रखा गया धर्म विज्ञान, इसीलिए अब इसको वैज्ञानिक परिभाषा दे दूं। वैज्ञानिक परिभाषा क्या है? विज्ञान का था रीजनिंग, धर्म का था फीलिंग। अब वही फिर विज्ञान कह रहा है, जितने दुनिया में दुष्ट लोग हुए सबके पास रीजनिंग है, फीलिंग नहीं। किसी ने मेरे से पूछा, मैंने कहा जब हम अपनी धरती को माँ मानते हैं, धरती माँ, भारत माँ, तो फीलिंग तो आएगी ना, हमें कैसी फीलिंग दी जाती है? तो रीजनिंग का संबंध है विज्ञान से, मस्तिष्क से। फीलिंग का संबंध है अध्यात्म से, हृदय से। और मेरे प्रिय आत्मन, वेद जब मनुर्भव की बात करता है तो यही, जिसमें रीजनिंग और फीलिंग, जिसमें विचार और अध्यात्म, विज्ञान और धर्म, वही पूर्ण मानव है जो राम और कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए, संतों के रूप में प्रकट हुए। फिर से समझिए, कुछ लोगों के पास रीजनिंग है लेकिन फीलिंग नहीं, कुछ लोगों के पास फीलिंग है लेकिन रीजनिंग नहीं है, कुछ लोग वैज्ञानिक हैं लेकिन आध्यात्मिक नहीं है, कुछ आध्यात्मिक है लेकिन वैज्ञानिक नहीं है। लेकिन आज समय कहता है आप सब बेटा बेटी, पुत्र पुत्री, नर और नारी, विचारों से वैज्ञानिक बनो, हृदय से आध्यात्मिक बनो, और दोनों के मेल से आप में राम की कृष्ण की शक्ति का जागरण होगा। जरूरत पड़ने पर सब कुछ आप करने में समर्थ हो तो अध्यात्म और विज्ञान का मेल आप इतना समर्थ बनाता है कि हर परिस्थिति का मुकाबला कर सकोगे। केवल रीजनिंग पूरा मुकाबला नहीं कर पाएगी, केवल फीलिंग नहीं कर पाएगी। इसलिए आज विज्ञान और धर्म की बात पर कह रहा हूं, हर व्यक्ति धार्मिक बने और वैज्ञानिक बने, और धर्म विज्ञान के मेल से इतनी शक्ति आप में जागृत होगी कि भारत की, समाज की कोई भी समस्या होगी उसे आप हल कर लेंगे, कभी कमजोर नहीं बनेंगे। तो आज का जो विषय धर्म विज्ञान रखा गया, वही कि धर्म और विज्ञान का जो समन्वय है वो राम में भी है, कृष्ण में भी है, शिव में भी है, जितने हमारे देवता हैं सब में है। लेकिन 750 बरस लोगों ने हमें गुलाम रखा, हमारे राम को नहीं हटा पाए, कृष्ण को नहीं हटा पाए 750 बरस में, शिव को नहीं हटा पाए, लेकिन हमारे अंदर एक हटाने की जबरदस्त मनोवैज्ञानिक चाल चले। तू तो राम का भगत है, सब में राम है, क्यों किसी से लड़ता है? तू तो शिव का भगत है, सब में शिव है। यही बात जा देखे गीता से साफ हो जाती है। जा सोचो तो सही, एक ने कहा इसलिए जवाब दिया, मैंने कहा द्रोणाचार्य जी कौन, भीष्म पितामह कौन, कृपाचार्य जी कौन? अरे हमारा कृष्ण दुर्योधन आदताई है, उन आदताइयों की मदद में द्रोणाचार्य जी भी है, भीष्म पितामह भी है, कृपाचार्य जी है, और हमने उनको नहीं छोड़ा तो तुम्हें तो क्या छोड़ूंगा। आप मेरी बात समझ गए होंगे, कितना हमारे आपके अंदर जागरण है धर्म और विज्ञान के प्रति, तो यही मैं आपसे कहूंगा, संप्रदाय की आत्मगौरव की, हम इस देश के हैं, हम इस मिट्टी के हैं, इसका स्मरण बना रहे। और ये स्मरण, राम का स्मरण, कृष्ण का स्मरण, हमारे विचार को कमजोर नहीं होने देगा। और अपने कार्य का संपादन करो, आप जो भी हैं, आप मंत्री हैं, कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, डॉक्टर हैं, सन्यासी, तो मेरे प्रिय आत्मन, धर्म और विज्ञान आपको पूर्ण पुरुष बनाता है। धर्म और विज्ञान का मेल गति और दिशा देता, गति भी देता, दिशा भी देता। धर्म और विज्ञान का मेल आपको मानव बनाता है, मधुर भाव की जो बात की गई। और इसी को वैज्ञानिक ढंग से हर व्यक्ति, जो हमारे यहां कहा गया, हर व्यक्ति को मस्तिष्क से विचारवान बनना, जिसको रीजनिंग कहा गया। क्यों, कैसे? हर व्यक्ति को क्षत्रिय संयम की बात, हर व्यक्ति को मस्तिष्क से विचार से ब्राह्मण बनना है, हर व्यक्ति को संयम से क्षत्रिय बनना है, व्यवहार कुशलता से वैश्य बनना है, और सबकी सेवा में हमें शूद्र बनना है। आप कहते हो ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो काट के फेंक दो ना, ये चार चीजों से। और यही चार चीजों को विज्ञान दो चीज में ला रहा है, रीजनिंग एंड फीलिंग। सड़क पर चलते हुए गिरा हुआ पैसा कोई भी उठाता है, ये राक्षस भी उठाएगा। सड़क पर चलते हुए किसी का पैसा गिरा है तो राक्षस उठाएगा, लेकिन गिरे हुए आदमी को उठाने वाला भारतीय होगा, राक्षस नहीं होगा। तो उसमें फीलिंग है, जा सोचो तो सही। हम अपने देश में राक्षसों को देखा है, आज हमारी लड़की की शादी है तो कोई हमारे गांव का राक्षस पुलिस के पास गया कि साहब मौका है, ऐसा करो, और पुलिस अफसर को भी देखा, उसको धोखे में रखा गया, आया, अरे भाई मेरे भी लड़के, इसके लड़के, इतनी फीलिंग तो हमारे अफसरों में है कि आज मैं कोई वारंट नहीं दूंगा, कुछ नहीं करूंगा। जा सोचो तो सही, नहीं देते। जा विचार करो, यही मैं आपसे कहता हूं, धर्म विज्ञान को साथ लेके चलना, ये राम के साथ भी, कृष्ण के साथ, शिव के साथ, जो भी कहिए मैं बताऊं। आज वैज्ञानिक भगवान शिव को कितना बड़ा वैज्ञानिक मान रहे हैं कि अपने पुत्र के सर्जरी के द्वारा हाथी का सिर रख दिया। विज्ञान कहता है, अभी हम लोग वहां तक नहीं पहुंचे, लेकिन विज्ञान कहता है संभव होगा एक दिन। हर चीज को इस रूप में देखा जा रहा है। तो मेरे प्रिय आत्मन, मनीषानंद का जन्मदिन आज 14 जनवरी के उपलक्ष में आप मना रहे हैं, जब भी आपके बीच में आया, आपके अंदर एक शक्ति का जन्म देने का प्रयास किया। मनीषानंद का जन्मदिन तो मना रहे हो, लेकिन बड़े प्यार से, बड़ी नम्रता से, बड़े आत्मगौरव से, बड़े स्वाभिमान से कह रहा हूं, आपने मेरी फोटो खींची, बहुत सुंदर फूल मालाएं चढ़ाई, बहुत कुछ किया, बहुत आनंद है, बहुत अच्छे लोग हैं, ये सज्जनों की पहचान है, साधुओं की पहचान है, बहुत अच्छा किया। लेकिन मैं ये चाहता हूं, आप जहां हैं, एक अच्छे इंसान बनकर, जो मैं बताया धर्म और विज्ञान, एक अच्छे इंसान बनकर आप मंत्री के रूप में आए, कलेक्टर के रूप में आए, कमिश्नर के रूप में आए, चाहे नर हैं कि नारी, और फिर देखिए भारत की धरती का गौरव पूरे विश्व में फैलता। आपने मेरी फोटो तो ले ली, एक कहानी सुनाऊ आपको, 6-7 साल पहले की बात। मैं जल्दी किसी के घर नहीं जाता, एक बार ऐसा हुआ कि भाई चलो उनके घर होता, चलो सुबह के समय घर गया तो उनके कमरे की मेरी जो फोटो थी थोड़ी उल्टी थी। मैंने कहा गुरुजी को उल्टा क्यों रखा? कहते गुरुजी कल कुछ मेहमान आ गए थे या पीने खाने वाले थे, गुरुजी आपकी कसम मैंने कोका कोला पिया था। मैंने कहा कसम वाले को मैं विश्वास ही नहीं करता, कोका कोला में 2 बूंद तो मिला था। कहा मित्रों ने थोड़ा मिला तो दिया था। तो मैंने सोचा गुरु जी ना देखे, तो बस गुरु जी को उल्टा कर दिया, गुरु जी नहीं देख रहे हैं, ये सिद्धांत जरा ठीक नहीं। ये फोटो का मनोवैज्ञानिक विचार बता रहा, आप राम का लाए, कृष्ण का लाए, शिव का लाए, ये मनोवैज्ञानिक विचार। आपके घर में राम का चित्र है, कृष्ण का है, शिव का, गुरु का, आपके गुरु का। आज मनोवैज्ञानिक कहते चित्र देखने से विचार आता है, तो जो मेरा चित्र ले गए, किसी का चित्र ले गए, अपने घर में चित्र रखते हो, अब इसी को मनोवैज्ञानिक ढंग से कह दूं, घर में चित्र तो राम का है और व्यवहार रावण का है, वो चित्र क्या करेगा। आप सुबह राम के मंदिर में राम की आरती उतारे और शाम को घर में रावण का रोल अदा कर रहे हो, भगवान क्या करेगा। आप अंबाजी जाकर आरती उतारे और घर की अंबाजी को थप्पड़ मार रहे हो, बहुत आनंद आ रहा। जा सोचो, विचारो, सत्य को रीजनिंग और फीलिंग इसको समझो। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े अफसर बैठे हुए, नाम नहीं लूंगा, एक बार ऐसे बात की तो उस प्रदेश का भी नाम नहीं लूंगा, कहे स्वामी जी बात ठीक है, यहाँ बैठे हुए हैं, नाम नहीं लेता, किसी प्राइवेट जानना हो तो बता दो, पूछ लो। एक क्लास वन ऑफिसर आप समझ जाना, क्लास वन, और रोज अपनी पत्नी को थप्पड़ मारता था। तो साहब जो यहाँ बैठे, मैंने उनसे कहे स्वामी जो ऐसे प्रदेश के हैं, उनका बाप सिखा के गया कि बैरी को ठीक रखना है तो रोज सुबह थप्पड़ मारना, और बैरी तो डबल एम ए और बेचारी थप्पड़ खा रही, क्या संस्कार लेकर आ पाए। जा सोचो तो सही, अब फिर उसका बच्चा क्या बनेगा। बच्चे को माँ से प्यार होता है, मनोविज्ञान। और आपसे कहता हूं, पति पत्नी जहां लड़ते हैं वो आप पता लगा लेना कि जब भी उसकी माँ का नादर होगा तो बच्चा शुरू में माँ को मानता है, इसलिए पिता का आदर नहीं होता। याद रखो, भारत के जितने पिता हैं जब मेरे पास आते, स्वामी जी लड़का मेरा कहना नहीं मानता, तो पहला प्रश्न है कि लड़के के सामने उसकी माँ का अनादर कितना करते। और आज तक मैं सफल हुआ, जिन लोगों ने बच्चे की माँ के सामने उसकी माँ का अनादर किया, वो आपकी पत्नी है लेकिन किसी की माँ है, इसलिए आप अपनी पत्नी का अनादर करते हो लेकिन बच्चे की माँ का अनादर करते हो। और मनोविज्ञान कहता है माँ के खिलाफ जो भी जाएगा बच्चा सहन नहीं करेगा, इसलिए मैं बताता हूँ आपसे कि पिता लोगों को बहुत सावधान रहना पड़ेगा। ये धर्म, ये रीजनिंग और फीलिंग, रीजनिंग तो आपकी ठीक है कि मेरी पत्नी है लेकिन वहां बच्चा बैठा, फीलिंग है वो किसी की माँ भी है। रीजनिंग तो है आपकी ठीक, शी इज माई वाइफ बट शी इज ऑल्सो मदर, वो आपकी पत्नी है किसी की मदर, यही विज्ञान का है। रीजनिंग आपकी ठीक है लेकिन फीलिंग, अब रीजनिंग फीलिंग की बात बताऊं आपको, रीजनिंग फीलिंग की बात बता दू, नहीं तो कहे स्वामी जी क्या बता के गए। ये आपको रीजनिंग फीलिंग का अर्थ क्या है, विज्ञान की परिभाषा, डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग ब्लाइंडली। कोई भी विचार, कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय, किसी को अंधे बन करके स्वीकार मत करो। मनोविज्ञान कहता डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग ब्लाइंडली। अब फीलिंग की बात आई, रीजनिंग क्या है और फीलिंग क्या है। रीजनिंग, डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग ब्लाइंडली। फीलिंग की बात आई, वंस एक्सेप्टेड देन बी ब्लाइंड टू फॉलो इट। रीजनिंग कहती है कि अंधे बनकर कोई चीज को स्वीकार मत करो, फीलिंग कहती है कि एक बात समझ के स्वीकार किया तो पूर्ण रूपेण अंधे बनकर के पालन करो तो विकास होगा, नहीं तो टकराते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, आधे हो जाओगे। ये है मेल विज्ञान और धर्म का, रीजनिंग और फीलिंग। मैं अनजान बनकर नरोली आया, चंद्र सिंह का पता मेरे पास था, मैंने पूछा एक अनजान व्यक्ति से कि चंद्र सिंह की कोठी किधर है, वो कहता है इधर है। मनोविज्ञान कहता है, रीजनिंग और फीलिंग दोनों, ये उदाहरण दे रहा हूं। रीजनिंग कहती है कि आदमी तो शरीफ लगता है, फीलिंग कहती है कि नहीं ठीक कह रहा है। और हम चंद्र सिंह की कोठी में बैठ गए, रीजनिंग किया, पता नहीं गलत बताया, ये बताया, तो वहीं चौराहे पे खड़े रहोगे, कभी नहीं पहुंचोगे। इसलिए विज्ञान कहता है, और इसी को धर्म विज्ञान कहा गया। तो आज जो आपके बीच में आया, बड़े अच्छी तरह से उत्सव मनाया जा रहा है। और मनीषा नंद कहते हैं बड़े प्यार से, मनीषा नंद का जन्म 14 जनवरी को हुआ, लेकिन मेरे विचारों से उत्सव रोज आपके घर में बनना चाहिए। जहाँ उत्सव है वहाँ कभी कोई न बीमारी आएगी, न कोई दुख आएगा, न कोई परेशानी आएगी। उसीलिए कभी रामनवमी मनाते हैं, कभी कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। तो मैं आपसे कहता हूँ, हर दिन उत्सव का बना दो, हर दिन 14 जनवरी मना दो, हर दिन रामनवमी कर दो, हर दिन शिवरात्रि कर दो, फिर दुख आए तो बताइए, दुख है कहाँ? ये विज्ञान से दोनों सिद्ध करता हूँ, दुख है कहाँ? मैं आपके कमरे में आया, ट्यूबलाइट जलाई, अंधेरा था, मैं आपके कमरे में आया, ट्यूबलाइट जलाई, मैं चेयर देखा, टेबल देखा, आपको देखा, तो अंधेरा क्यों नहीं दिखाई पड़ता? खुद विज्ञान कह रहा है, जो अस्तित्व की बात बार बार कह रहा हूं, जो अस्तित्व है उसे आप खत्म नहीं कर सकते। अंधेरा था ही नहीं, क्यों था? विज्ञान का जवाब, और फिर बताता हूं। दुख, विज्ञान कहता है द एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। विज्ञान कहता है अंधेरे का अस्तित्व नहीं है, प्रकाश का अभाव अंधेरा है। इसलिए आनंद उत्सव का अभाव ही दुख है। दुख आप पैदा किए हुए हो, और दुख मिटाने के लिए हमेशा आनंद में रहो, फिर दुख आ जाए तो मेरे पास आना, उसका गला दबा के मंत्री जी के साथ नर्मदा जी में फेंक दूंगा। अरे है ही नहीं तो क्या गला दबाऊंगा? गला तो हम आनंद का दबा रहे हैं, राग द्वेष में गला तो आनंद का दबा रहे हैं। मैंने किसी से कहा, ये तो उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण आम बात, मैंने किसी से कहा कि मैंने अपने चेले को आशीर्वाद दिया मुख्यमंत्री बनेगा। दूसरा चेला कहता, गुरुजी मैंने आपकी बड़ी सेवा की है, मेरी भी इच्छा की पूर्ति करो। हाँ बेटा, बड़ी सेवा की है, इच्छा की पूर्ति। गुरुजी जिस मेरे चेले को आशीर्वाद दे, जिस अपने चेले को आशीर्वाद दिया, मेरा पड़ोसी है, ये मुख्यमंत्री बनेगा तो मुझसे सहन नहीं होगा। तो भाई तू प्राइम मिनिस्टर का आशीर्वाद ले। स्वामी जी मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना है, लेकिन इसको मुख्यमंत्री बनाओगे तो मैं बड़ा दुखी हो जाऊंगा। अरे वो तुम्हारा पड़ोसी मुख्यमंत्री बन रहा है, तुम्हें दुख कैसे होगा? आपने मान लिया। अब यही देखिए, दोनों बात लीजिए। विज्ञान कहता है कि अंधेरा आपने पैदा किया, क्योंकि आपने ट्यूबलाइट नहीं जलाई, दीपक नहीं जलाया। और यही वेद कहता है, दुख आपने पैदा किया, क्योंकि आपने आनंद घोर दिया, आनंद को मार दिया, मर्डर कर दिया। दुख कहां है? तो यही मैं कहता हूं, कम से कम आज 14 जनवरी के बाद सभी संप्रदाय के लोग यहाँ आए हैं, बड़ा प्यार है, मंत्री भी आए हैं, पूर्व मंत्री भी आए हैं, अच्छे अच्छे क्लास वन ऑफिसर आए हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी आए, बहुत लोग आए हैं, और आप सब एक से एक हैं। आज मैं अपने जन्मदिन के अवसर पर हाथ जोड़कर स्वाभिमान के साथ यही कहूंगा, आए मेरे भारत के वासियों, आज 14 जनवरी को आप पतंग आकाश में उड़ाते हैं। हे मेरे प्यारे परिवार वालों, पूरे भारत के निवासियों, खास करके आज जो उपस्थित हैं, आपकी समृद्धि, आपका आनंद, आपका जीवन आकाश तक पहुंचे, ये 14 जनवरी का एक संदेश। लेकिन फिर यही कहूंगा, जब हमारी पतंग ऊपर जाती है तो सबसे पहले पड़ोसी ही काटता। ये देश की बात कर रहा, आज हमारा देश ऊपर जा रहा है, इतनी सावधानी से पतंग चलाओ कि कोई पड़ोसी काट न सके। ये सावधानी, और यही सावधानी के लिए मैंने रीजनिंग और फीलिंग की बात की है, इसी सावधानी के लिए धर्म और विज्ञान की बात की है। ये संक्रांति जो है, थोड़ा आपने बताया भी, आज पतंग का दिन है। अब यही मैं आपसे चाहूंगा कि नरोली जैसे आज बैठे हो, ऐसे रीजनिंग फीलिंग लेकर के सभी धर्म वाले इकट्ठा बैठे, अपनी ऊर्जा को जागृत करें, और वो ऊर्जा 14 जनवरी के आधार पर इतनी ऊंची जाए, इतनी ऊंची जाए कि मुर्दा भी अपना सिर उठा करके आपके उत्सव की पतंग को देखे। हम तो देखेंगे, मुर्दा भी देखे, कमजोर भी देखे, क्योंकि बलवान आदमी सिर ऊंचा कर सकता है, कमजोर आदमी कभी सिर ऊंचा इस तरह आप शरीर से स्वस्थ बने, संपत्ति से स्वस्थ बने, विचार से स्वस्थ बने, और यही संदेश धर्म विज्ञान के नाम से आपको दिया। फिर से आप एक अस्तित्व हैं, ना आपका जन्म है ना मरण है, आप कमजोर नहीं है, आप सोचते हो कमजोर हो, बस वही गड़बड़ी है। खंखेर दो इसे, जैसे चांदी पर धूल पड़ जाती है तो खंखेरते हैं। तो आज इस 14 जनवरी पर बड़े प्यास हाथ जोड़ करता हूं, जो हताशा निराशा कमजोरी की धूल पड़ी है वो खंखेर रहा हूं, बाकी आप वही को वही है, यू बिकम व्हाट यू आर, जो है वही मैं आपको बना रहा। पत्थर की मूर्ति जब बनती है तो बाहर से नहीं बनती, उसमें जो बेकार पत्थर है वो निकाल। आज 14 जनवरी के प्रवचन में मैं बाहर से कुछ नहीं आपको दे रहा हूं, आपके अंदर राम है, कृष्ण है, शिव है, गुरु है, लेकिन उस पर जो धूल जम गई है ये वाणी के प्रभाव से, ये वाणी को पानी समझना। जैसे सिर पर धूल लगने से माँ बाथरूम में ले जाकर धोती है, ऐसे इस मंडप को बाथरूम मानिए, मुझे अपनी माँ मानिए, उस धूल को मैं धोने का प्रयास कर रहा हूं, बाकी और कुछ नहीं कर रहा। आप तो शुद्ध हैं, मैं आपको शुद्ध नहीं बना रहा हूं, आप पवित्र हैं, आपको पवित्र नहीं बना रहा हूं, आप वीर हैं, आपको वीर नहीं बना रहा हूं, आप नम्र हैं, सब कुछ हैं, लेकिन नम्रता के साथ जो कायरता की धूल लग गई, वीरता के साथ जो क्रूरता की धूल लग गई, स्वाभिमान के साथ जो अभिमान की धूल लग गई, उस धूल को मैं हटाना चाहता हूं, उस कीचड़ को हटाना चाहता हूं। तो मेरे प्रिय आत्मन, आप नर हैं कि नारी हैं, अपने मनीषानंद की बात को सुनना, पूरा भारत एक है, सत एक है, एक गौरव की बात है। कोई पंजाब का है, कोई दिल्ली का, कोई अहमदाबाद का, कोई नरोली का, हम सब उसी मिट्टी से बने, उसी ऊर्जा से बने। तो आज धर्म विज्ञान के बल पर आपको एक अच्छा इंसान बनने का संकेत दिया, एक आधार दिया। आइए आज इस उत्सव में हम लोग हिस्सेदार बने, और उत्सव के हिस्सेदार यही है मानव से मानव मिले, हम सब पूरे भारतवासी मिलकर रहे। एक बार मुझसे बाहर कहीं पूछा गया कि स्वामी जी आपका ब्राह्मण आप लोग सिर पर चंदन क्यों लगाते हो, जो प्रश्न था थोड़ा पॉलिटिकल था। मैंने जवाब दिया, आप बताएंगे कि भारत में चंदन कहां पैदा होता है? कहते कन्याकुमारी। मैंने कहा केसर कहां पैदा होती है? कहते कश्मीर में। तो हमारा हर साधु, हर ब्राह्मण, हर भगत, हर सज्जन केसर है कश्मीर की, चंदन है कन्याकुमारी का। केसर और चंदन के लेप से हम मस्तक पर तिलक लगाते हैं, और हमारा हर संत भारत की अखंडता को गौरव पूर्वक अपने मस्तक पर लगाकर पूरे विश्व में भ्रमण कर रहा है। आज धर्म विज्ञान से भारत अखंड बना रहे, हमारी संस्कृति बनी रहे, और एक अच्छे मानव बन करके जो आपको बताया, हम समर्थ बने हैं, हम बलवान बने हैं, जो कमजोरियां उसको निकालो, और जैसी भी कैसी भी परिस्थिति हो, अब रामायण और महाभारत का मनोविज्ञान एक उदाहरण, रामायण महाभारत से एक उदाहरण, खराब से खराब परिस्थिति राम के सामने आई, खराब से खराब परिस्थिति पांडवों के सामने आई, और मनोवैज्ञानिक क्या करें, खराब से खराब परिस्थिति में जिसमें हताशा नहीं आती, निराशा नहीं आती, कमजोरी नहीं आती, जो अपनी गति को कमजोर नहीं करता, वही एक दिन पूरे विश्व में राम और कृष्ण बनकर के चमकता है। यही मैं आपको चाहता हूं। हर अनंत हर कथा अनंता रामायण की एक बात, आप भविष्य की बात पूछते हैं, रामायण के आधार। एक बार राम ने वशिष्ठ से पूछा, गुरुदेव मेरा भविष्य बताओ। वशिष्ठ जी कहते हैं, पुत्र मैंने अपने राम को तैयार किया है, हर तरह से मैंने अपने राम को हर तरह से इतना तैयार किया है, या तो अपना भविष्य बना लेगा या जैसा आएगा संभाल लेगा। अगर मेरा राम कमजोर होगा तो न भविष्य बना सकता है और न संभाल सकता है। मैं वही बात आपके सामने बड़े प्यार से कहना चाहता हूँ। आज 14 जनवरी के इस विचार में आपको एक विचार देना चाहता हूँ। आप वशिष्ठ के शब्दों को याद करें, मनीषानंद नारी जो भी बैठे हैं, मैं आप इतना तैयार करना चाहता हूँ, या तो अपनी भविष्य की परिस्थिति को संभाल लो या तो नया बना दो। और मैं आपको तैयार करना चाहता हूँ, और आपका भविष्य तैयार किया, और आप ही कमजोर होंगे तो भविष्य संभाल नहीं पाओगे। मैंने अपने लड़के को पढ़ाया नहीं, एक बात कहता हूँ समझा, मैंने अपने लड़के को पढ़ाया नहीं, लिखा नहीं, लायक नहीं बनाया, और 1 करोड़ का फ्लैट दे दिया, परेशान हो जाएगा, बेचकर झोपड़ी मार जाएगा। मैं आप इतना तैयार कर रहा हूं कि अगर मेरे वारिस में 1 करोड़ का फ्लैट मिले वो भी संभालो और दूसरा बनाओ, और नहीं बना सको तो कम से कम 1 करोड़ तो संभालो। मैं इतना तैयार करना चाहता हूं कि 5 उंगलियों को तो संभालो, भूल से कहीं 1 काट कर 4 तो न करो, भले 6 न बना सको लेकिन 4 तो न करो। तो मेरे प्रिय आत्मन, यही बार बार हमारे वेद का उपदेश है, उपनिषदों का है, हमारे संतों का है, इसलिए हमारे संतों के साथ ये नहीं लगता, भूतपूर्व शंकराचार्य जी, ये भूतपूर्व कवि साहब, या अंग्रेजी के हिसाब से बोला जाता है लेट शेक्सपियर फलाना, ये नहीं बोला जाता। किसी शंकराचार्य जी के साथ, संत के साथ लगा, राष्ट्रपति के साथ लगता है कि वार लेट प्रेसिडेंट, वार लेट मिनिस्टर, नहीं तो एक्स आ जाएगी, एक्स प्रेसिडेंट है, एक्स मिनिस्टर, आप तो जानते हो, वन हु इज लिविंग बट ही इज नॉट ऑन द चेयर, वी से दैट ही वाज एक्स प्राइम मिनिस्टर कलेक्टर, आर कभी लगा एक्स सन्यासी या लेट सन्यासी? नहीं। इसलिए संतों की बारी अस्तित्व की है, हमेशा मौजूद है। और फिर से वही दोहरा दो, मेरे प्रियात्मन, राम मंदिर में जाओ, किस मंदिर से मंदिर में जाओ, लेकिन आज विज्ञान कहता आपका अस्तित्व ही राम बन रहा है, आपका अस्तित्व किस बन रहा, कहीं कोई खंडन की बात नहीं है, अस्तित्व हमेशा मौजूद है, जो वेद ने अंत में कह दिया तत्वमस। तो वेद की जो ऊंची बात है आपको बताया, और जो अस्तित्व है, ये मनीषानंद 100 साल के बाद जाएंगे, आप भी जाओगे, ये आकार प्रकार बदलेगा, बाकी अस्तित्व का कभी विनाश नहीं है, ये समझ लोगे तो किसी परिस्थिति में घबराओगे नहीं, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। आज इस प्रवचन के माध्यम से, धर्म विज्ञान के माध्यम से, वेद शास्त्रों के आधार पर विज्ञान की जितनी भूमिका थी वो आपको दिया। फिर से मैं कहता हूं, हमारे बुद्ध ने कहा धर्मम शरणम गच्छामि, आज विवेकानंद का धर्मम विज्ञानम शरणम गच्छामि, धर्म विज्ञान की शरण में जाओ, और एक बलवान पवित्र शुद्ध बुद्ध मुक्त नर नारी बन करके अपने धर्म का पालन करो, यही आज का मुख्य संदेश है। मैं फिर से परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, जो उपस्थित है वो भी, जो मेरे विरोधी होंगे वो भी, टोटल नहीं विरोधी होता, पार्ट विरोधी होता, जो मेरे में से निकले होंगे वो विरोधी होंगे, आप मुझे बहुत प्यार करते हैं इसलिए आपको नजर आता, बाकी कहीं कहीं किसी को हमराज नजर आता हूँ आपको मालूम नहीं। एक बार किसी गांव में गया, कहते यमराज आ गया, मैंने कहा क्यों, कहते तुम आओगे कथा करोगे, कोई मंदिर में चढ़ाता ही नहीं, तुम तो अस्तित्व की बात करते हो, नहीं जाओ मंदिर, क्यों जाओ, मैं कोई खंडन नहीं करता। तो आज सब अच्छे अच्छे लोग आए, और सबका नाम लोग बहुत, पंजाब से भी लोग आए, अहमदाबाद से भी आए, बड़ौदा, अच्छा तो ये आप अनाउंस कर दो। हाँ भाई, अगली 14 जनवरी जो है, हमारे जो है गिरीश भाई वासिया वकील हैं, बाबू भाई हैं, राजन है, और अमेरिका के हमारे अपने शिष्य छोड़ भाई, ये सब मिल करके अगली 14 जनवरी सूरत में है, और सूरत का जेवन तो प्रसिद्ध है, प्रवचन देखा जाएगा, है कि नहीं? ऐसा तो फिर से परमात्मा से प्रार्थना करते हुए सभी आए, बता पंजाब है, अहमदाबाद है, बड़ौदा है, नरोली है, बम्बई है, अब सबका नाम लूंगा, फिर स्वामी जी करोड़पति का नाम लिया और मेरा नहीं लिया, मंत्री का नाम लिया मेरा, आप सबके प्रति नम्रता पूर्वक आपका स्वाभिमान जागृत होकर और समाज और देश के काम आए, यही वेद और उपनिषद की बात है, जो धर्म और विज्ञान के नाम से कहा, ये मेरा विचार, मेरी फोटो तो घर ले जाते हो लेकिन मेरा विचार भी ले जाना, ये लोग स्वामी जी फोटो लाया था, विचार तो नहीं लाया था। और एक महात्मा ने मेरे लिए कहा, वो कहूंगा, नाम नहीं लेता, बहुत ऊंचे महात्मा है, एक बार उनका जूता चोरी हो गया तो किसी ने उनसे कुछ कहा, कहा भाई मेरी सभा में जूता चोरी होता है और मनीषानंद की सभा में विचार चोरी होता है, इसलिए विचार को चुराना है तो मनीषानंद सभा में जाओ और जूता चुराना है तो मेरी सभा में जाओ। मैं कहता जूता भी चुराओ विचार भी चुराओ दोनों चुराओ, क्योंकि चुराएगा कौन जिसको अभाव होगा, और मेरा परिवार कमजोर है ना इसलिए चोरी का कोई सवाल ही नहीं उठूंगा, चोरी का कोई सवाल ही, अरे हमारा परिवार कमजोर हो तो चोरी करे ना, इसलिए मुझे मालूम है कि मेरे परिवार में से कोई जूता चोर, सब विचार चोर है। भगवान आप सबको सुखी रखे, प्रणाम, नमस्कार, शुभेच्छा। ओके।